أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام آيات نمبر 141. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم سورہ الانعام ختم کر لیں گے, اور تھوڑی سی ریویژن اس باب میں کہ انعام کا مطلب ہے مویشی, اور وہ جو سورت کے نام کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اس کا نام یہ کیوں ہے, وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ آئے گی. ابھی تک آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ سورت میں بہت زیادہ قدرتی دلیلیں دے کر قدرت کی طرف سے اور اللہ کی تخلیق کی طرف سے, اور خاص طور پہ ان جانوروں کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے جو غیر اللہ پر اور بتوں پر اور آستانوں پر قربان کیے جاتے ہیں اور ان کی نظریں مانی جاتی ہیں, اور وہ ساری باتیں کر کے اللہ نے شرک کا رد کیا ہے, شرک کی نفی کی ہے. اور یہ سورت, جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ توحید کا خلاصہ ہے, اور اس میں ہر قسم کے شرک کا رد کیا گیا ہے. آج بھی جو سبق چل رہا ہے یہ وہی سبق ہے. اس میں قدرتی مناظر اور تخلیق جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے, یہ بوٹنی یا نباتات پودوں کے بارے میں ہے, اور بڑی خوبصورت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ وہ ذات جس نے اتنی زیادہ ورائٹی تمہارے سامنے بنائی ہے ایک خلیے سے, ایک سیل سے. کبھی کسی ایک بیج کو آپ دیکھیں, آج کل میں اپنے گھر میں بیج اگانے کی کوشش کر رہی ہوں. بڑا انٹرسٹنگ فینومینن, جیسے ہم بچوں کو کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو بیج میں سے ایسے کومپل نکلتی ہے اور ایسے پودا نکلتا ہے, تو اللہ کی قدرت ہے صرف ایک بیج کو دیکھ کے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ذات ہے, انشأ, پیدا کیے. میں نے آپ کو کہا تھا نا نون شاہ شین حمزہ یا نون شاہ الف جسے یا واو جسے ہمارا اردو کا نشو و نما نکلا ہے, ایک چیز کو پیدا کر کے اس کو پروان چڑھانا. تو وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا, جس نے پروان چڑھایا جناتن. جنہ جو ہے باغ کو کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جنت باغ ہے. جیم نون نون, بڑا انٹرسٹنگ روٹ ہے اس کا, کیونکہ جیم نون نون کا مطلب جس سے اردو کا لفظ جن نکلا ہے. تو جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس سے ہم ڈرتے ہیں, وہ اندھیرے میں, ہم کہتے ہیں اندھیرے میں جن رہتے ہیں. تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جس پہ درختوں کا اور پتوں کا سایہ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ اس کی زمین تک روشنی نہیں پہنچتی. اور اگر آپ نئی ریسرچ دیکھیں, دنیا میں ایسی ٹیمز بن گئی ہیں, ایسی سوسائٹیز بن گئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم دنیا کی ریفورسٹیشن کریں, اگر ہم دنیا میں اتنے درخت لگا دیں جیسے اس میں شروع میں تھے, اس سے پہلے کہ جب انسان نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا, تو یہ دنیا جو ہے یہ اس کا ماحول اور ماحولیاتی جو گندگی ہے وہ سب ہم ختم کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی اس دنیا کو, اس خوبصورت دنیا کو بچا سکتے ہیں. ان میں ایک مشہور انوائرمنٹلسٹ ہیں جن کے اکثر کلپس میں خیر اپنے حیاء علی الفلاح میں بھی بھیجتی رہتی ہوں. بڑے زبردست نریٹر ہیں وہ, اور قدرتی مناظر پر اور قدرتی جو درخت ہیں اور پودے ہیں اور جانور ہیں ان کی ڈاکیومنٹریز بہت بہت مشہور ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اتنے درخت اس دنیا میں لگا دیں جتنے انسان کے آنے سے پہلے تھے, جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے تھے کیونکہ درختوں کی عمروں کا اندازہ ان کے تنوں سے ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ پتھروں میں, جس میں مردہ درخت جو ہیں وہ پتھروں میں فوسیلائز ہوئے ہیں, تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کس قسم کے درخت تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں, سر ایٹن برو نام ہے ان کا, میں کوشش کرتی ہوں ان کی چھوٹی سی کلپ بھیج دوں تاکہ آپ کو زیادہ ان سے آپ کو یاد آ جائے گا وہ کون ہے, بہت مشہور ہیں وہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا پہ اتنے درخت لگا دیں تو وی ول بیکم دا گارڈن آف ایڈن. اور گارڈن آف ایڈن جو ہے یہ بائبل میں اس جنت کو کہتے ہیں جس سے حضرت آدم اور اما حوا دنیا میں آئے تھے. यानी कि हम जन्नत बन जाएंगे। वही उनका ये कहना है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम जन्नत बन जाएंगे, क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन एक ऐसा बाग था जिसमें रोशनी हर वक्त एक खुशगवार साया छाया हुआ होता था, और उसकी नमी जो थी वो उसके अंदर ही बंद होती थी। वो दरख्त जो थे वो इतने घने थे और वो पत्ते बुखारात को ऊपर फ़ज़ा में नहीं जाने देते थे, वो अंदर बंद करके उस नमी को रखते थे। तो वो बड़ा खूबसूरत एक सीन बताते हैं इस जन्नात ये, क्योंकि चूंकि हम कुरान पढ़ते हैं तो उनकी बातें सुन के भी इंसान के जहन में आता है कि वाकई एक इंसान जब इलम की मेराज पे पहुंच जाता है तो वो ऐसी बातें करता है जो कुरान में लिखी हुई हैं, चाहे उसको कुरान का पता हो या ना हो। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। तो वही ज़ात है जिसने पैदा किए जन्नात, वो बाग मारूशात, अर्श आयन राशीन का मतलब अर्श है ऊपर ऊंचा, तो चढ़े हुए। मारूशात अरबी में बेलों को कहते हैं, वो नबातात जिनको हम किसी दीवार के सहारे या किसी छतरी के सहारे ऊपर चढ़ाते हैं, या किसी जैसे बेलें होती हैं फ्रूट्स की, जैसे अंगूर हैं। तो जन्नात मारूशात वगैर मारूशात, और ना चढ़ाए हुए, वो उनको चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। व नखला और खजूर, व ज़रा और ज़रात जैसे खेती, मुख्तलिफन मुख्तलिफ हैं उकुलुहू उसके फल, व जैतून और जैतून, व रुमान और अनार, मुतशाबहन मिलते जुलते, वगैरह मुतशाबे और गैर मुशाबे जो आपस में नहीं मिलते। कुलू मिन समरी ही खाओ इन सब के फल, इज़ा असमरू जब वो फल लाए, व आतू और अदा करो हक़हू उसका हक, यौम हसादिही उसके काटने के दिन। ये वो हुक्म है जिससे हमारी शरीयत का हुक्म उशर का आया है कि दसवां हिस्सा आपने हर फसल का, हर बाग का जब कटाई हो जाए, जब फल आ जाए, तो दसवां हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पे अदा करना है, इसको उशर कहते हैं। वला तुसरिफू और बेजा खर्च ना करो, इसराफ, ये इसराफ की आयत है, और इस सूरत में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो जहाँ पे अपनी नेमतों का जिक्र किया है तो उसी आयत में अल्लाह ने कहा है वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना। इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक वो अल्लाह ला युहिब्बु वो दोस्त नहीं रखता, वो पसंद नहीं करता अल मुसरिफीन इसराफ करने वालों को। इसराफ क्या चीज़ है? सिंपल उर्दू में बेजा खर्च करना, बेजगह खर्च करना। और पहले मैं आपको इसका लुगवी मतलब समझाती हूँ। सराफा, सीन राम रे फा, सराफा का मतलब है जिसे इसराफ निकला है, सराफा घुन को कहते हैं। ये एक ऐसा कीड़ा है जो दरख्तों में पाया जाता है। मेरी एक क्लास में अच्छी दोस्तें थीं जिनको मैंने एक्चुअली वो घुन का वो घर ला के दिखाया था, क्योंकि मुझे एक दफ़ा कहीं कलर कहार के पास एक झाड़ी में वो मिल गया था। लेकिन आपने ऐसे कई कीड़े देखे होंगे जो अपने इर्द गिर्द एक खौल बनाते हैं। तो ये जो सरफा जो है ये अपने इर्द गिर्द एक खौल बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है सारी उम्र, यहाँ तक कि जब इसका वो घर मुकम्मल हो जाता है तो ये उसके अंदर दम घुट के मर जाता है। बड़ा ज़बरदस्त, यानी अरबी की मैं क्या इसकी फसाहत की तारीफ़ करूँ, कि सरफा वो घुन है जिसने सारी उम्र एक घर बनाया जिसके अंदर इसका अपना ही दम घुट गया और ये मर गया। यही मिसाल इसराफ की है। इसराफ वो अमल है जिसे आप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उसमें अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अपने वसाइल इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ उसमें डाल देते हैं, माल डाल देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसराफ की सबसे बड़ी मिसाल जो मैं अब जल्दी से समझाने के लिए लोगों को देती हूँ ना, वो मैं कहती हूँ आप निकाह की मिसाल ले लें। जो लोग मेरा दौरा सुनते रहे हैं उनको पता होगा कि मैं किस कदर टूटे हुए दिल से ये ज़िक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म जो कुरान में दिया है कि दो गवाह हों और वो निकाह खान हो और वो वली हो जो बच्ची का, लड़की का बाप है या भाई है, और लड़का लड़की हो, शायद उनके वालदैन हो वहाँ पे, बहन भाई हो, और निकाह हो जाए। हमारे यहाँ जो हमने निकाह की और शादी की सूरत बना दी है, अब तो मुआशरे के पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, गरीब अमीर, हर कोई हमारे मुआशरे में साफ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कि ये निकाह अगर इतने कॉम्प्लिकेटेड ना होते तो हमारे यहाँ इतनी जना ना होती, हमारे यहाँ इतना इतना नौजवान लोग जो हैं जिनकी शहवतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जिनको अपनी शहवत कहीं जायज़ तरीके से निकालने का मौका नहीं मिलता, वो फिर बच्चों के साथ और औरतों के साथ और लड़कों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। काश ये निकाह आसान होता, काश इस तरह की कोई बात ना होती कि इसके पास इतना माल हो और ये इतना बड़ा फंक्शन करे और ये इतने लाख का हमारे लिए लहंगा खरीद सके और ये इतने लाख का खाना दे सके, तो कितना आसान होता। कम से कम मुआशरे में ये गलाजतें और कबाहतें तो ना होती। तो इसराफ ये वो गुन है जो मुआशरे को चाट जाती है, ख़ुद तो इसने मरना होता है। तो अल्लाह कहता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक वो बेजा खर्च कर। इस आयत को यहाँ रखने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अल्लाह की नेमतें हैं और वो हम सबको बता रहा है कि कितनी ज़्यादा मेरी नेमतें हैं तुम्हारे लिए, लेकिन बेजा खर्च नहीं करना, क्योंकि वो बेजा खर्च करने वालों को, इसराफ करने वालों को नहीं पसंद करता। वमिनल अनआम, और चौपायों में से, हमूलतन हमल, बोझ उठाने वाले, तो बड़े बड़े चौपाए जो बोझ उठाते हैं जैसे अरब मुआशरे में ऊंट थे, वो फर्शन, और ज़मीन से लगे हुए छोटे छोटे चौपाए जैसे छोटी छोटी बकरियां हैं, फिर बकरियों में भी किस्में हैं, बाज़ तो ऐसे लगता है बिल्कुल ज़मीन पे ही चल रहे हैं, बड़े क्यूट छोटे छोटे हम शीप और ये बकरियां देखते हैं। कुलू, खाओ, में मा रज़क़कुमुल्लाह, जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क दिया, वला तत्तबिऊ, और ना तुम पैरवी करो, खुतवात शैतान, खुतवात ये ख़त की जमा है, और ख़त का क्या मतलब है, निशान, कदमों के निशान। पैरवी जो है जैसे किसी के कदम पर पैर रख रख कर चलना, तो तुम पैरवी ना करो शैतान के कदमों की। खुतवात शैतान की बहुत बड़ी तफसीर है, इनफैक्ट इसके ऊपर एक अलग सेशन है, अगर मुझे कहीं मिल गया मैं आपको भेज दूंगी कि खुतवात शैतान क्यों इतने अहम हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कह के आपको दो तीन मिसालें दूंगी खुतवात शैतान की, और इंशाल्लाह इससे आगे जो सूरत आ रही है सूरह आराफ, वो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है इस टर्म की, खुतवात शैतान की, के शैतान के कदमों के निशानों ने इंसान को कहाँ कहाँ पामाल किया है और इंसान और अल्लाह का ताल्लुक इसने कहाँ कहाँ तोड़ा है। खुतवात शैतान की तीन मिसालें जो हैं मैं आपको देती हूँ। पहली मिसाल जो है वो अल्लाह के अहकामात से, पहली मिसाल जो खुतवात शैतान की, पहली चीज़ जो इस तरफ इंसान को ले जाती है, सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इत्तबा, सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश को ठीक समझना। जो कितनी दफ़ा हमने सूरत में पढ़ा है ना, अटकलें दौड़ाते हैं, ये तो बस अपने जन की पैरवी करते हैं, ये तो अपने गुमान के पीछे भागते हैं। पहला खुतवात शैतान जो है, पहला शैतान के कदमों का निशान जो है, वो आपके नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिश है। इसकी सिंपल मिसाल, जैसे पेट भर के खाना खा लिया ना, अब पेट भरा हुआ है, फिर कहते हैं मेरा तो आइसक्रीम खाने को दिल जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी, आपका पेट फट रहा है, आपने अभी भी बिरयानी की प्लेटें दो खाई हैं, कोरमा खाया है, पता नहीं क्या कुछ खा लिया है, अब आइसक्रीम, अच्छा नहीं सिर्फ आइसक्रीम भी नहीं खानी, मेरा बाहर जाके आइसक्रीम खाने को दिल जा रहा है। ये खुतवात शैतान है। नंबर एक, जो पैसा आप इस आइसक्रीम पे लगा रहे हैं, वो पैसा आप कितनी और अच्छी जगहों पे लगा सकते हैं। गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हैं, अपने आप को एक ख़तरे के हवाले कर रहे हैं, आजकल तो जो सीज़न है तो उसमें तो बाहर जाने का सवाल भी नहीं पैदा होता। लेकिन खुतवात शैतान, ये नफ्स की ख्वाहिश आपको मजबूर कर रही है कि वो पेट जिसमें आप दौरान खून बढ़ा हुआ है और हज़म का निज़ाम शुरू हो गया है, उसमें आप बर्फ़ जैसी ठंडी आइसक्रीम डालें ताकि खून की नालियां सुकड़ जाएं और जो खाना अंदर पड़ा हुआ है वो अंदर ही गलता सड़ता रहे, और सुबह जो है आपको उस खाने की जो स्मेल है, उस खाने का जो बू है, वो आपको अपनी नाक में और अपने हल्क में महसूस होती है। खुतवात शैतान के पीछे आप चले ना, अपनी अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी की, तो जिस्म और रूह और अल्लाह ताला और कितना कुछ आपने अपने लिए ख़राब कर दिया, गड़बड़ कर दिया। तो अपने नफ्स की पैरवी। दूसरी जो खुतवात शैतान है वो है कुरान की आयात से लापरवाही। तो ये इसकी तो बड़ी आसान समझ है कि कुरान के जो अहकामात हैं, अभी अभी गुजरा है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, वो पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को, वो बेजा खर्च करने वालों को। फिर इन्नल मुबज़िरीन काना इख्वानुश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले जो हैं वो शैतान के भाई हैं। ठीक है ना। तो कुरान की आयात से लापरवाही, बल्कि कुरान की आयात से लापरवाही पहली चीज़ है जो खुतवात शैतान पे इंसान को उस्तवार करती है, क्योंकि उसको हिदायत नहीं नज़र आ रही होती। उसके बाद जब चूंकि वो कुरान की आयात से लापरवाह हो चुका है, फिर वो अपने नफ्स की पैरवी करता है और वो अपने नफ्स की ख्वाहिश पे चलता है, जिसकी मिसाल मैंने आपको भरे हुए पेट के ऊपर मज़ीद लवाजमात भरने की उससे दी कि अपने नफ्स की ख्वाहिश पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुरान की आयात से लापरवाही, अपने नफ्स की पैरवी, और तीसरा निशान जो है वो ये है कि इंसान जब सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश पे चले तो फिर वो उसको जस्टिफाई करता है। ये भी बहुत बड़ा खुतवात शैतान है, शैतान के कदमों का निशान है कि इंसान गलती तो कर ले और उसको पता भी हो कि उसने गलती की है, लेकिन वो उस पर अकड़ जाए और वो ये कहे। और ये जो है हज़रत आदम और शैतान का फ़र्क है, जब इन्हें जन्नत से निकाला गया था, हज़रत आदम ने फौरन तौबा की थी और उसके बदले में उनको दुनिया की खिलाफत दे दी गई, जबकि शैतान अकड़ गया था और उसने ये कहा था कि मैं इसको क्यों सजदा करूं, ये तो मिट्टी का बना हुआ है और मैं इसे गुमराह करूंगा, और वो क़यामत तक और इटर्निटी तक जो है वो लानत ज़दा हो गया, रांदा दरगाह हो गया। इन्नहू, बेशक वो, लकुम अदुव मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। समानियतन, आठ अजवाजिन, ये वो आयत है जो मैंने आपको कहा था कि सूरत की जो वजह तस्मिया है कि इसका नाम ये क्यों है, ये वो आयत है। समानियता, आठ अजवाजिन जोड़े हैं, मिनज़ानी, भेड़ में से, असनैनी, दो, अजानी स्नैनी, दो भेड़ों में से, व मिनल माज़ स्नैनी, और बकरी में से दो। कुल, फरमा दीजिए, आ ज़करैनी, क्या दोनों नर हर्रमा हराम हैं, अमिल उनसयैनी, या दोनों मादा, अमश्तमलत अमश्तमलत, या वो जो शामिल है, जो लिपट रहा है, अलैहि अरहाम उसनयैनी, या इन दोनों मादा के रहम में, जो इनके पेट में जो कुछ मुश्तमिल है या लिपट रहा है या शामिल है। ये मैंने शुरू में आपको इनकी नज़रों का बताया था, कभी मादा जानवर पे नज़र मान रहे हैं, कभी नर जानवर पे, कभी प्रेग्नेंट मादा पे, कभी उसके बेबी पे। तो उस हवाले से अल्लाह, चूंकि सूरत ख़त्म हो रही है, तो वापस साइक्लिक स्ट्रक्चर है सूरत का, वापस उस तरफ जा रहा है कि देखो किसने हराम किए हैं, ये दोनों मादा या जो दो मादा के पेट में जो कुछ है। नबीउनी, मुझे बताओ, बिइल्मिन, किसी भी इलम से, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वो मिनल इब्न स्नैनी, और ऊंटों में से भी दो, वो मिनल बकर स्नैनी, और गाय में से भी दो। आठ हो गए ना सारे, हैं, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गया और गाय हो गई। अब ये स्पेसिफिकली ये जानवर नहीं है, लेकिन ये वो बड़े ग्रुप्स हैं जो अल्लाह बयान कर रहा है अनाम के। कुल, फरमा दीजिए, आज ज़करैनी, क्या दोनों नर हर्रमा उसने हराम किए हैं, अमिल उनसयैनी, या दोनों मादा, अम्मश्तमलत, या वो जो शामिल है, अलैहि अरहामुस नयैनी, इन दोनों मादा के पेट में है। अमकुन तुम शुहदा, क्या तुम वहाँ मौजूद थे, इस वस्सा कुमुल्लाह, जब अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया था, बिहाजा, इस तरह का कोई हुक्म अल्लाह ने कभी दिया है? तुम कहते हो कि हम अल्लाह के नाम पे ये नजरें कर रहे हैं, ये ओंगी बोंगी कस्में खा रहे हैं, तो तुम वहां मौजूद थे। फमन अजलमो, तो कौन बड़ा जालिम है, मैं मनिफ्तरा, उससे जिसने झूठ बांधा, जिसने बुहतान लगाया, अल्लाह ही कज़बा, अल्लाह पर झूठा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्लाह ने शिर्क को अल्लाह पर बुहतान लगाने के बराबर करार दिया है, क्योंकि जब कोई शिर्क करता है तो गोया वो ये समझ रहा होता है और वो ये इम्प्रेशन देता है कि ये काम अल्लाह नहीं कर सकता, नाउज़ बिल्ला। इसीलिए हम नाजायज़ सिफारिश कर रहे हैं, हम रिश्वतें दे रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, हम हक तलफी कर रहे हैं, हम जायदाद के फैसलों में बेईमानियां कर रहे हैं, हम अपने काम के साथ बददयानती कर रहे हैं, हम अमानतों में खयानत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह नहीं देख रहा। तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है, जिसने अल्लाह के बारे में ये गुमान किया कि उसे नहीं पता चलेगा, या अगर हमने ये नाजायज सिफारिश ना कराई तो हमारा नालायक बच्चा बेरोजगार रह जाएगा और उसको खाने को नहीं मिलेगा। क्या ये पहले तो नालायक बच्चा कहाँ से आ गया, उसको सिफारिशें कर करके हमने कुछ बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, और उसके बाद हम उसको नौकरियां दिला रहे हैं और उस 50-50 हकदार बच्चों के हक मार के हम उस बच्चे को एक पोस्ट दिला रहे हैं। हम ऐसे प्रोफेसरों को जानते हैं, अल्लाह बख्शे, जो अपने बच्चों के लिए सीटें दबा के बैठे रहे, उन पे किसी को नहीं आने दिया, यहां तक कि वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो सीट फिर भी खाली रही क्योंकि बच्चा इंग्लैंड या अमेरिका में सेटल हो गया। तो अल्लाह माफ करे, कौन बड़ा जालिम है उससे जिसने अल्लाह पर बोहतान बांधा। कज़िबन, एक झूठा, लियुदिल्लन्नासा, ताकि वो लोगों को गुमराह करे, बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन, वो हिदायत नहीं देता ज़ालिमों को। कुल, फरमा दीजिए, ला अजिदु, मैं नहीं पाता, फ़ीमा उहिया, उसमें जो मुझे वही की गई है, इलैया, मेरी तरफ, मुहर्रमन, कोई भी हराम, अला तुआइमे, किसी खाने वाले पर, यतअमुहु, किसी खाने वाले पर उसको खाना हराम नहीं है उस वही में जो मेरे पास आती है, इल्ला, सिवाय इसके, अन यकूना, के वो हो, मैततन, मुर्दार। हलाल हराम का यहाँ पे दोबारा से रिवीजन हो रहा है, ये गुजर चुका है इससे पहले भी, और इसी सूरत में भी हराम हलाल का बयान शिकार की मद में गुजर चुका है, कि वो मुर्दार हो, औदमा, या वो खून हो, मसफूहन, सफ़हा, साफ़ेहा, बहना, तो वो खून है बहता हुआ, यानी जब जानवर को ज़िबह करते हैं तो तेज़ी से जो खून निकलता है उसको खाना पीना या उसको इस्तेमाल करना हराम है। औलहम खिंजीरिन, या सुअर का गोश्त, फ़इन्नहु, पस बेशक वो रिजसुन, नापाक है, और फिस्कन, या वो फिस्क है, गुनाह है, ओहिल्ला, जिस पर पुकारा गया, लिग़ैरिल्लाह, गैर अल्लाह का नाम, बिही, उस पर, सारी चीज़ें गंदगी हैं, नापाक हैं। फमन तुर्रा, बस जो इस्तिराब में हो, लाचार हो, गैर बागिन, ना फरमानी ना करने वाला, वला आदिन, और ना ही सरकश हो, फ़इन्ना रब्बका, बस बेशक तेरा रब, गफूर रहीम, वो बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। यानी कि भूख से लाचार और जिसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो, उसको इस कदर खाने की शरीयत में इजाज़त है इन आयात की रोशनी में कि उसकी जान बच जाए, क्योंकि हमारी शरीयत में जान मुकद्दम है। याद रखें, क्योंकि मैं, मेरा तो डॉक्टर होने के नाते से जितना मैं फ़िक्ह पढ़ती हूँ या जितने फतवे पढ़ती हूँ, हमारी दीन में और सब जितने भी दीन हैं दुनिया में, जान मुकद्दम है, जान बचाने के लिए हराम का इस्तेमाल उसकी इजाज़त है। وعلى الذين هادوا, और हाँ, वो लोग जो यहूद थे, हर्रमना, हमने हराम किया था, कुल लजीज फुरिन, हर एक नाखून वाला जानवर, आज भी उन पर हराम है, उन्होंने खुद पे चूंकि हराम किया था तो सजा के तौर पे उन पे हराम किया गया था। वमिन अल-बकरी, और गाय से, वल-गनमे, और बकरी, हर्रमना, हमने हराम किया था, अलैहिम, उन पर, शुहूमहुमा, उनकी चर्बियाँ, इल्ला, सिवाय मा हमलत, जो लगी हुई हो, अटैच हो, ज़ुहूरुहुमा, जो या उठाई हुई हो उन्होंने, ज़ुहूरुहुमा, उनकी पीठों ने, तो पीठ पर यानी स्पाइनल कॉलम जो है उसके इर्द गिर्द जो चर्बी है, या जो बाज बड़ी बड़ी दुमें होती हैं जानवरों की, दुम्बों की, उसमें चर्बी होती है, वो इन पे, इनको इजाज़त थी उसको इस्तेमाल करने की। अव्वल हवाया, या वो अंतड़ियों में लगी हुई हो, अव मख्तलता, या जो मिली हुई हो, बे अज़्मिन, हड्डी से, जालिका, ये, जज़ाइनाहुम, हमने उनको बदला दिया था, बे बग़यिहिम, उनकी सरकशी का, व इन्ना, और बेशक हम, लस्वादिकून, अलबत्ता सच्चे हैं। तो यहूद पर ये चीज़ें कैसे हराम हुई, इसका बयान आगे आएगा। चर्बी जान, किसी ऊंट की चर्बी, या इस तरह की मिसाल है कि हज़रत याकूब का फेवरेट खाना था, और जब हज़रत यूसुफ गुम हुए अलैहिस्सलाम, तो हज़रत याकूब ने वो चीज़ खानी छोड़ दी थी उनके गम में, और उन्होंने मन्नत मानी थी कि जब तक मेरा ये बेटा नहीं मिलेगा तब तक मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा। बनी इसराइल ने वो चीज़ मुकम्मल तौर पे हराम कर दी इस रिवायत को सामने रखते हुए, और उनको सजा के तौर पे ये आयात जो हैं ये तौरात में हैं कि आपने ये चीज़ें, ये जानवरों की चर्बियाँ अब नहीं खानी, तो ये एक सज़ा थी जो उनको मिली थी। फ़इन कज़्ज़बूका, पस अगर वो आपको झुठलाएं, फ़क़ुर रब्बुकुम, पस फरमा दीजिए रब्बुकुम, तुम्हारा रब, ज़ू रहमतिन वासिया, एक बड़ी वसी रहमत वाला है, वला युरद्दु, और टाला नहीं जा सकता, बासुहू, उसका अजाब, अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिमों की कौम से। बड़ी खौफनाक आयत है, जिस कौम पर अजाब का फैसला हो गया हो, उससे फिर नहीं टाला जाता। और ये कौमें वही हैं जो मुजरिम साबित हो चुकी हों, जो जानते बूझते गुनाह करती हैं और जो जानते बूझते अजाब की निशानियों को पहचानने से इनकार करती हैं और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होती, तौबा इस्तग़फार नहीं करती, उनसे उनका अजाब नहीं टाला जाता। सयकूलुल्लज़ीना, अन करीब कहेंगे वो लोग, अशरकू, जो मुशरिक हैं, लौशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, मा अशरकना, हम शिर्क ना करते। ये बात इस सूरत के शुरू में गुजरी है ना कि हम सबको एक कबीला बना देते। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह गुजरी है कि तुम्हें इनका इनकार बड़ा भारी गुजरता है, तुम इनके दिल में ईमान डाल सकते हो? जमीन में कोई सुरंग खोदो या आसमान में एक सीढ़ी लगाओ, हम देखते हैं तुम कैसे इनके दिल में ईमान डालते, क्योंकि ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह कर सकता है। तो अनकरीब जो मुशरिक हैं वो ये कहेंगे, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते। वला आबाउना, और ना ही हमारे बाप दादे। वला हर्रमना, और ना ही हम हराम ठहराते, मिन शैइन, किसी भी चीज़ को। कज़ालिका, इसी तरह, कज़्ज़बल्लज़ीना, झुटलाया उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, हत्ता, यहाँ तक के, ज़ाक़ू बअसना, ज़ाक़ू ज़ायक़ा, उन्होंने चखा, बअसना, हमारा अज़ाब। कुल, फरमा दीजिए, हल इंदकुम, क्या तुम्हारे पास, मिन इल्मिन, कोई इलम है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछें क्या तुम्हारे पास कोई इलम है। फतुखरिजूहु लना, तो उसको निकालो हमारे लिए, जाहिर करो हमारे लिए। इन तत्तबिउना, नहीं तुम पीछे चलते हो, इल्लज़न्न, मगर गुमान के। व इन अंतुम, और तुम नहीं हो, इल्ला, मगर तखरुसून, अटकलें चलाते हो। अभी अभी मैंने आपको बताया ना खुतवाते शैतान, मुनाफ़िकों की निशानियाँ, कुरान की आयात से लापरवाही, सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी और अपनी गलती पर जम जाना, अकड़ जाना और उसे सही साबित करने के लिए अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देना, रुजू करने की ताकत से महरूम हो जाना। कुल, फरमा दीजिए, फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, फलिल्लाह, बस अल्लाह ही के लिए है, अल हुज्जत, हुज्जत दलील, हुज्जत वैसे तो झगड़े को कहते हैं, लेकिन हुज्जा का मतलब वैसे जो है दलील, अलबालिगा, पूरी की पूरी, यानी जब तुम दलीलें दे दे के थक जाओ थक जाओ थक जाओ, तब अल्लाह की दलील आती है, लड़ते रहो तो अल्लाह की दलील जो है वो पूरी है, वो मुकम्मल है, उसे देखकर फिर तुम्हारे दिमाग और आंखें खुल जाएंगे। फलौशा, बस अगर वो चाहता, लहदाकुम अजमाइन, तो वो तुम सबको हिदायत दे देता। कुल, फरमा दीजिए, हलुम्मा, तुम लाओ, शुहदाउकुम, अपने गवाह, अल्लज़ीना, वो जो, यशहदूना, जो गवाही दें, अन्नल्लाह, ये के अल्लाह, हर्रमा हाज़ा, उसने हराम किया इस चीज़ को। फ़इन शहीदू, बस अगर वो गवाही दें, फ़ला तशहद माहुम, तो उनके साथ फिर गवाही नहीं देनी। वो हो सकता है वो कस्में खाएं, वो कहें हमारी तौरात में ये लिखा है, हमें हमारे बाप दादे ये करते थे, हम कसम खाते हैं कि ऐसा ही है, तो आप फिर उनके साथ गवाही ना देना। वला तत्तबे, और तुमने पैरवी नहीं करनी, अहवा अल्लज़ीना, ख्वाहिशात की उन लोगों की, कज़बू बे आयातना, जिन्होंने झुठलाया हमारी आयात को। वल्लज़ीना, और जो लोग, ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते, बिल आखिरत, आखिरत पर, वहुम बिरब्बिहिम, और वो अपने रब के साथ, या अदिलून, अदल, बराबर ठहराते हैं। कज़बू बे आयातना, कुरान की आयात, हमारी आयात, हमारी निशानियों को झुठलाना, जो लोग आखरत पर ईमान नहीं लाते, और वो अपने रब के बराबर उनके शरीक ठहराते हैं। कुल, फरमा दीजिए, तआलो, आ जाओ, अतलो, मैं तिलावत करता हूँ, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, माहर्रमा रब्बुकुम, जो हराम किया है तुम्हारे रब ने, अलैकुम, तुम पर। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, गौर से सुननी है। अल्लाह, ये के नहीं, तुशरिकू बिही शैया, तुमने शिर्क करना है, शरीक करना है उसके साथ कुछ भी। सबसे पहले तो अल्लाह ने यह हराम किया है। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन के साथ बेहतरीन सलूक करना है, नेक सलूक करना है। वला तख्तुलू औलादकुम, और नहीं कत्ल करना तुमने तुम्हारी औलाद को, मिन इमलाक, मुफलिसी के डर से, देने वाला अल्लाह है, ठीक है। नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रिस्क देते हैं, व इयाहुम, और उनको भी। वला तक़रबुल फवाहिशा, اور فحش کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، ما ظہر منہا جو ظاہر ہے اس میں، وما بطنا اور جو چھپا ہوا ہے، ولا تقتل النفس اور تم نے اس جان کو نہیں قتل کرنا، التی وہ جو حرم اللہ ہو جس کو حرمت دی ہے اللہ نے، الا بالحق مگر حق پر۔ قتل جان کے بدلے جان لے رہے ہیں، جہاد میں قتل کر رہے ہیں، سزائے موت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ قتل جو ہے وہ ناحق ہے۔ ذالکم وصاکم، یہ تمہیں فائنل حکم ہے، وصیت ہے نا، بہی اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، ریویژن ہو رہی ہے نا، آخری 10 آیات ہیں، ولا تقربوا مال الیتیم اور قریب نہیں جانا یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ایسے جو ہی احسن جو بہترین ہے، حتی یہاں تک کہ یبلغ اشدہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُ الکیل اور وفا کرو پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول وزن قائم کرنا، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسن ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یاد رکھیں جو بوجھ اللہ نے ہم پہ رکھا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی استطاعت ہم میں موجود ہے، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَا چاہے وہ ہو ذَا قُرْبَى تمہارا رشتہ دار، یاد ہے کہ وَشَهِدُوا لِلَّهِ گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، جیسا اس گواہی دینے کا حق ہے، سورہ نساء میں گزرا ہے نا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کا عہد پورا کرو، آگے سورہ آراف آ رہی ہے، اللہ کے اس عہد کا اس میں بہترین ذکر ہے، بہترین ایکسپلینیشن ہے، عہد الست کی بات ہو رہی ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور اس یعنی آگے جو اللہ، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، تو یعنی اللہ نے یہ وعدہ تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم یہ نصیحت حاصل کرو، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے، وَأَنَّا اور یہ کہ ہاذا صراطی یہ میرا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، صراطی مستقیمہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ بس تم اس کی پیروی کرو۔ یعنی شیطان، اللہ نے شروع میں کہا تھا نا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اس سیدھے راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعو اور نہ پیروی کرو السبل مختلف راستوں کی، دوسرے راستوں کی، فتفرق تو وہ جدا کر دیں گے بکم تمہیں، عن سبیلی ہی اس کے راستے سے، اس راستے سے تمہیں وہ جدا کر دیں گے جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، اگر تم اور راستوں کی پیروی کرو گے۔ ذالکم وصاکم بہی یہ حکم دیا ہے اس نے تمہیں، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا موسی الکتاب پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تماماً نعمت پوری کرنے کے لیے، علی الذی اس پر جو احسن جو نیکوکار ہے، احسان کرنے والا ہے، و تفصیلاً اور اس تفصیل کے لیے، لکل شیئن ہر چیز کی، و ہدن و رحمتاً اور ہدایت اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے آئیں، و ھذا کتاب اور یہ کتاب ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن برکت والی۔ دیکھیں اوپر تورات کا ذکر ہے، یہ فرق اب آپ نے سورت کے اینڈ میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے، ثم آتینا موسی الکتاب پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً پوری کی پوری، اتمام کرنے کے لیے، کس چیز کا اتمام؟ اتمام نعمت، علی الذی احسن اس کے لیے، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جو احسان کرنے والا ہے، و تفصیلاً اور تفصیل تاکہ اس کو تفصیل مل جائے، لکل شیء ان ہر چیز کی، و ہدن و رحمتاً اور ہدایت اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے آئیں، و ھذا کتاب اور یہ ایک کتاب ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا، مبارکن बरकत वाली। ऊपर जितनी चीज़ें थी ना कि इतमाम नेमत है एहसान करने वाले के लिए, तफसील है इसमें लिकुल शय इन हर चीज़ की, वह हुदन और ये हिदायत है, वह रहमतन और ये रहमत है, और ताकि वो बिलिका रब्बिहिम युमिनून आखरत पर ईमान ले आए। वो सारी चीज़ें जो हैं उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है, ये तो कुरान का जिक्र हो रहा है। वो ये सारी चीज़ें कुरान में भी हैं, लेकिन कुरान की सिर्फ एक यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है, मुबारकुन, बरकत वाली है। यानी वो सारी बातें तो इसमें हैं, लेकिन इस किताब में उन बातों के साथ साथ एक बरकत है। अब इस बरकत को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो आसमानी सहीफ़ों में जितने अहकामात थे, जो गुनाह और सवाब का बयान था, जो नेकी और बदी का बयान था, ब्लैक एंड वाइट, और जो शरीयतें थीं, वही चीज़ कुरान में है। तो आखिर फिर ये किताब उनसे कैसे मुख्तलिफ है? एक तो ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं और कुरान वो फाइनल कड़ी है, तो इसमें तो बरकत इसलिए अल्लाह ने रखी है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, बरकत का मतलब अबंडेंस, तो बरकत तो इसलिए है कि इसने क़यामत तक चलना है, इसके बाद कोई और किताब आ नहीं रही, तो वो बरकत इस किताब का खासा है। दूसरी बात यह है कि पिछली किताबों, चूंकि वो उस ज़माने के लिए होती थीं और वो उम्मतें वहाँ पे मौजूद होती थीं और वो पैगंबर अक्सर वहाँ मौजूद होते थे जिन पे किताब नाजिल हो रही है, और वो उसके बाद एक शरीयत बनती थी और वो उम्मत उन शरीयतों पे चलती थी। जैसे शरीयत जो है, शरीयत मूसवी वो यहूद की शरीयत है, नसरानियों की जो है वो बाइबल से आई है शरीयत, जो भी वो शरीयत फॉलो करते हैं, इसी तरह हमारी शरीयत जो है वो कुरान से आई है, लेकिन हमारी शरीयत वो फाइनल शरीयत है जिसके बाद किसी और नबी ने, किसी और किताब ने, हत्ता कि किसी और शरीयत ने भी नहीं आना। तो इस चीज़ ने दुनिया के साथ साथ चलना है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस ज़माने में मक्का में नाजिल हुई और हमने वही हरकतें करनी और हमने वही काम करने हैं जो उस वक्त मक्का में या मदीना में हो रहे थे। हम में से अक्सर ये बरकत का कॉन्सेप्ट जो है ना, हम जैसे मक्का या मदीना की खजूरों के साथ हम बरकत अटैच कर देते हैं। मेरी बात का बुरा ना माने, खजूरें मुझे भी बहुत पसंद हैं और मैं वो खजूरें मैं बड़ी मोहब्बत से खाती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में एक एहसास है, एक तकद्दस है कि ये उस सरजमीन से आ रही हैं जिसका क्या पता कौन सा रेत का ज़र्रा कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर को टच किया हो। इतनी मोहब्बत है हमें उनके साथ कि उनके यानी कि मस्जिद नबवी में जाके ज़ारों कतार रोते हैं हम, जितनी रक़त वहाँ इंसान पर तारी होती है। तो ये एक दिली अटैचमेंट है उनके साथ, लेकिन ये बरकत जो है ये उन जगहों के साथ और या किसी ख़ास मौके के साथ अटैच नहीं है। ये बरकत, ये अबंडेंस जो है ये क़यामत तक है, इसकी कोई ज्योग्राफिक लिमिटेशन नहीं है। कुरान किसी ने जापान में उठा लिया और किसी ने इंग्लैंड में उठा लिया और किसी ने अमेरिका में उठा लिया, वो उस बरकत में शरीक हो गया। किसी ने मक्का मदीना में उठा लिया, वो भी उसमें उसी तरह शरीक हो गया। फिर खजूर किसी ने कहीं भी खाई, उसमें उसको उतनी ही ताकत मिलनी है और उतनी ही तकवीयत मिलनी है जितनी किसी भी खजूर से उसको मिलेगी, हैं जी। बरकत, खजूर की बरकत जो है ये हर जगह पे एक जैसी है। लिहाजा वहाँ हमें बड़ी मोहब्बत है उस सरजमीन से, उस मट्टी से, वहाँ के की हिस्ट्री से, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा खुश हों वो खजूर खा के। तो ये बरकत का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जिन घरों में कुरान होता है ना, वो घर बरकत वाले घर होते हैं, और जिनमें कुरान नहीं होता फिर उनमें चाहे कुछ भी हो उनमें बरकत नहीं होती। जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं ना, उनकी महीने की चंद हज़ार की तनख्वाह में भी बरकत होती है, और जो अल्लाह से बेबहरा होते हैं अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने वाले, वो बेचारे करोड़ों में भी जाकर सुकून से नहीं रहते। तो बरकत का ये कॉन्सेप्ट आप समझते जाएं। ये मैं अल्फाज में अब मेरे लिए बयान करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ आइडिया देना चाहती थी कि वो सारी शरीयतें भी इस किताब में हैं और वो ये बरकत से भी भरी हुई है। फत्तबिउहु, बस इसकी पैरवी करो, और जब तुम इसकी पैरवी करोगे तो क्या निशानी है कि तुम इसकी पैरवी कर रहे हो? वत्तकू, और परहेजगारी इख्तियार करो। लअल्लकुम, ताकि तुम तुरहमून, तुम उनमें शामिल हो जाओगे जिन पर रहम किया जाता है। अंतकूलू, ये के तुम कहो, इन्नमा, इसके सिवा नहीं है, उन्ज़िलल किताबु, उतारी गई थी किताब, अला त्वाइफतैने, दो ग्रोहों पर, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले भी, व इन कुन्ना, और इन कुन्ना, ये के हम थे, अन دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، درس درس و تدریس، ہاں پڑھنا پڑھانا، لغافلین البتہ بے خبر، یعنی قرآن کے درس سے غافل نہیں ہونا. بار 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 میں آپ کو کہتی ہوں سمپل فیس ویلیو پہ کہ کہیں تم ایسا نہ کہو، ان تقولو یہ کہ تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین، ہم سے پہلے بھی دو گروہوں پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، و ان کنا، اور یہ کہ ہم عن دراستہم لغافلین ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. او تقولو یا تم یہ کہو لو انا اگر ایسا ہوتا، اگر لو انا اگر ہم پر انزل علینا الکتاب ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکنا البتہ ہم ہوتے اہدا منہم زیادہ ہدایت پر ان سے. کمپیریزن نہیں کرنا، یہ تو زمانوں کی بات ہے. فقط جاءکم پس تحقیق آ گئی ہیں تمہارے پاس، بینتن روشن دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن و رحمتن اور ہدایت اور رحمت. فمن ازلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کذب بآیات اللہ جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، وصدفا اور کترا جائے پھر جائے، انہا اس سے. سنجزی اللذین انقریب ہم، سا انقریب نہ ہم جزا دیں گے، اللذین ان لوگوں کو، یصدفون جو کتراتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب بڑا برا عذاب، بما کانوا یصدفون بسبب ان کے کترانے کے. هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر ان تأتیہم الملائکتو تأتیہم ان کے پاس آئیں، الملائکتو ملک فرشتے، او یأتیہ یا آ جائے ربک تمہارا رب، او یأتی یا آ جائے بعض کچھ، آیاتی ربک کچھ نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. یوم یأتی جس دن آئے گی، بعض آیات ربک کوئی نشانی، بعض کوئی آیات ربک تمہارے رب کی نشانی، لا ينفع نہیں کام آئے گا، نفسن کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان، کون سا ایمان، لم تکن نہیں تھا، آمنت وہ ایمان لایا، من قبلو اس سے پہلے، او کسبت یا اس کی کمائی، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرہ کوئی بھلائی. بڑی امپورٹنٹ غلط فہمی کا رفع ہو رہا ہے یہاں پہ کہ حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، ایمان نہیں لاتے، نشانیاں مانگتے ہیں، او یا اتی ربک یا اللہ آ جائے، یعنی اللہ زمین پہ آ کے سمجھائے، او یا اتی بعض آیات ربک یا کچھ نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے آ جائیں، معجزے مانگتے ہیں، یہ کرامات مانگتے ہیں. یوم یا اتی جس دن آئے گی، بعض آیات ربک کوئی نشانی تمہارے رب کی، یعنی یہ قیامت کا دن ہے، لا ينفع نفسا ایمانها کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یعنی قیامت کو دیکھ کے تو ایمان 100% وہاں 1000/100 ہو جائے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہے گا، لیکن جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا تو اس دن کا ایمان پھر اسے کوئی نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرن دوسری بات، جس نے جو ایمان لے آیا لیکن اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کمائی، اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا. اللہ ہمیں قرآن سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، بار بار میں یہ دعا کرتی ہوں. قل انتظرو فرما دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی منتظر ہیں، وہ فیصلہ آنے والا ہے. ان الذین اب فائنلی جو آیت ہے یہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن شرک کی گزر گئی ہے، الحمدللہ اچھی طرح سب کو سمجھ آ گئی ہوگی شرک کی. یہ اب ایک ایسی بات ہے جو شرک تو نہیں ہے لیکن اس طرف لے جانے والی ہے. ان الذین بے شک جو لوگ فرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، تفرقہ ڈال دیا، دینہم اپنے دین میں، وکانو شیعاً اور وہ ہو گئے شیعہ، جو شین الف عین ہے یا شین یا عین ہے، اس کا مطلب ہے گروہ، یعنی گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں، کلمہ گو بہن بھائی ہیں، ان کو شیعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گروپ ہیں، وہ ایک الگ گروپ ہیں. وہ جب انیشل جب ڈویژن ہوئی ہے तो कोई जो है वो कहता है हम सुन्नत पे कायम हैं तो वो सुन्नी बन गए, और उनसे अलावा कोई है जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके अपने अकायद हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक इमामत का सिलसिला है, तो उनको फिर ये लोग शिया कहते हैं कि आप एक अलग ग्रुप हैं। सही और गलत पे मैं तबसरा नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कानू शियान, तो वो ग्रोह दर ग्रोह हो गए, ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। ये वो शिया नहीं है हमारे जो शिया बहन भाई हैं, इससे मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि वो हो गए ग्रोह, ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। लस्त मिनहुम, नहीं है, नहीं है आपका मिनहुम उनसे फीशे इन कोई ताल्लुक। बड़ी खौफनाक आयत है। हमारे जो जो सुन्नी सुन्नी बहन भाई सुन रहे हैं, जो शिया बहन भाई सुन रहे हैं, जो बरेलवी बहन भाई हैं, जो देवबंदी बहन भाई हैं, जितने यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस जो ये मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब मेरे बहन भाई हैं, आप कलमा गो हैं, आपकी जान और माल मुझ पे हराम है, मैं आप मेरे लिए इंतहाई हुरमत रखते हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन देखें अल्लाह यहाँ क्या कह रहा है। बेशक जिन लोगों ने तफरका डाला अपने दीन में, मैं जो भी हूँ, मेरा जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, मेरा जो भी फ़िरका है, अल्लाह ना करे कि मेरा कभी कोई फ़िरका हो, लेकिन मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ और मैं सबको मुसलमान समझती हूँ, और मैं सब के लिए अगर काम करना हो, अगर उनकी मदद करनी हो, अगर उनके लिए जान देनी हो दीन के मामले में, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी मोमिन हूँ, ऐसी मुस्लिम हूँ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जिन्होंने तफरका डाला और वो ग्रोह दर ग्रोह हो गए, इसका मतलब है कि एक ग्रोह दूसरे को गलत कहता है। लस्त मिनहुम फी शैइन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कितनी खौफनाक बात है, इसका क्या मतलब है? हैं, जिस शफात कुबरा पे हम तकिया लगा के बैठे हुए हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफात करेंगे, वो शफात कुबरा की यहाँ पे नफी है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फिरकों में पड़ गए ना और एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो फिर आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्सेप्ट ठीक कर लें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। हम सब कुरान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग ये सुन रहे हैं सबके लिए दुआ करें। इन्नमा, इसके सिवा नहीं है, अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के हवाले है। सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर वो समझा देगा उनको, खबर दे देगा उनको, बिमा कानू यफअलून, जो वो करते थे। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे लोग कहते हैं ना, आप बीच में से हट जाएं। कितनी खौफनाक बात है ये, कौन नहीं चाहता कि उसके लिए शफात की जाए, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। आज अहद करें, किसी को गलत नहीं कहना, सब ठीक हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मंजा बिल हसनती, हाँ, जो आया नेकी के साथ, फलहू अशरु अम्सालिहा, तो उसके लिए 10 हैं उसके बराबर, यानी 10 गुना नेकी सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। वह मंजा अब सैयअते, और जो बुराई लाएगा, जो गुनाह लाएगा, फला युजा, तो वो बदला नहीं पाएगा, इल्ला मिसलहा, मगर उसके बराबर। बचपन में कहते थे ना, एक अच्छाई करो तो 10 नेकियां मिलेंगी और एक गुनाह करो तो एक गुनाह मिलेगा, बड़े खुश होते थे ये सुन के। एनीवे, अल्लाह सबको बुराई से बचाए, अल्लाह सैयाद से सबको अपनी पनाह में रखे। वहुम ला युजलमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। कुल, फरमा दीजिए, इन्ननी हदानी, बेशक मुझे हदानी, मुझे राह दिखाई है, रब्बी, मेरे रब ने, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। ये वो सुन्नत है जिस पे हम चलते हैं। दीनन कय्यमन, ये एक दुरुस्त दीन है, ये एक कायम दीन है, कायम और दायम रहने वाला दीन है। दीन का क्या मतलब है? एक मतलब है बदला, यौमिद्दीन हम कहते हैं ना, बदले वाला दिन। दूसरा मतलब है तरीका, एक काम को करने का तरीका। दीन, दीनन कय्यमन, ये दुरुस्त दीन है। मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, जो अल्लाह के होकर रहने वाले थे, जो मुशरिक नहीं थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। अब जो आयत आ रही है, ये इतनी प्यारी है ना, और ये कुर्बानी से पहली पढ़ी जाती है, बड़ी खूबसूरत आयत है। कुल, फरमा दीजिए, इन नस्वलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। ला شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک، اور اسی بات کا، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں نے یہی بات کرنی ہے. میں قرآن پڑھا رہی ہوں، آپ انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے، ہم نے یہی کہنا ہے. ہم قرآن پہ کیسے عمل کریں؟ شرک کا رد کریں، شرک نہ کرنے دیں کسی کو. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں. میں سب سے پہلا کا مطلب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، قرآن کے پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے. اول المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم فرسٹ آ جاتے ہیں، میں فرمان برداری میں فرسٹ آنے والا ہوں، میں وہ ہوں. ٹھیک ہے؟ قل، فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی رب ڈھونڈوں؟ وہو رب کل شیئن، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. ولا تکسب، اور نہیں کمائے گا، کل نفس، ہر شخص، الا علیہا، مگر اپنے عمل کا وبال، نہیں کوئی کمائے گا اس کا گناہ، صرف وہی جس نے وہ کیا ہوگا. ولا تزیرو، اور نہ اٹھائے گا، وازرتن، کوئی اٹھانے والا، وزر اخرا، دوسرے کا بوجھ. یاد رکھیں، مشہور آیت ہے، ولا تزیرو وازرتن وزر اخرا، وزیر اس سے نکلا ہے، بوجھ اٹھانے والا. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. فینبئکم، تو وہ تمہیں سمجھا دے گا، بتا دے گا، بما کنتم، اس کے ساتھ، فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. دین کے معاملے میں لڑنا چھوڑ دیں، بحث کرنا چھوڑ دیں، اختلاف کرنا چھوڑ دیں، دلیل دینا چھوڑ دیں، بس سب مل کر قرآن پڑھا کریں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جَعَلَكُمْ، اس نے تمہیں مقرر کیا، خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس زمین میں پیچھے آنے والے، جنہوں کے پیچھے تم آئے تھے. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ، اور بلند کیے تم میں سے بعض، فَوْقَ بَعْضٍ، دوسروں پر درجات، درجوں میں، نیکیوں کے درجے ہیں، گناہ کے درجے ہیں، اعمال کے درجے ہیں، سچ کا درجہ ہے، جھوٹ کا درجہ ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتا کو، اس میں جو اس نے تمہیں دیا. کوئی خوبصورت ہے، کوئی دیندار ہے، کسی کی زبان اچھی ہے، کسی کے لکھنے کی طاقت بہت اچھی ہے، کسی کے پاس بہت مال ہے، کسی کی بہت اولاد ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کے پاس 10 نوکر ہیں، کوئی خود ہی نوکر ہے. ہر سب انسانیت کے درجے ہیں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یہ مقصد تخلیق ہے. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارا رب، سَرِيعُ الْعِقَابِ، بہت جلدی سزا دینے والا ہے، تعقب کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.